السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے خوبصورت نام کے اوپر بات کرنے والے ہیں، جس میں بہت ہی جامعیت ہے. یہ نام قرآن کریم میں صرف ایک دفعہ آیا اور سورت الاخلاص میں آیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے الصمد، سیلف سفیشنٹ، انڈیپینڈنٹ، جس کو ہم اپنی اس کے اندر زبان میں کہہ دیتے ہیں بے نیاز. بے نیاز کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھا ورڈ ہے کہ مستغنی، کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے ہمیں ہمیشہ کسی نہ کسی کی ضرورت رہتی ہے. ہم بچے ہوتے ہیں تو والدین کی ضرورت ہے، بڑے بھی ہوتے ہیں تو ساتھی کی ضرورت ہے، اس کے بعد اولاد کی ضرورت، پھر کھانے پینے کی ضرورت، پھر رہنے سہنے کی ضرورت، پھر صحت کی ضرورت، پھر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اپنے پیارے رشتوں کی ضرورت، دوست احباب کی ضرورت. تو انسان چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، وہ کسی نہ کسی طور پہ دوسروں کا ضرورت مند رہتا ہے، ایک چیز میں نہیں تو کسی اور چیز میں ہوگا. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو اور اس کو کسی کی بھی ضرورت کبھی نہ ہو. ہم ہمیشہ دوسروں کے اوپر کسی ایک چیز میں ورنہ دوسری میں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، زندگی کے ہر فیس میں. اس کائنات میں صرف ایک ذات ایسی ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ساتھی کی، نہ دکھ سکھ کرنے والے کی، نہ تنہائی کو مٹانے والے کی، اکیلے پن کو دور کرنے والے کی، نہ کسی طرح سے بھی کسی بھی ایسے رشتے کی ضرورت نہیں جیسے ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ممکن، ایسی کوئی احتیاج اس کو ہے ہی نہیں. ورنہ یہ کمزوری ہو جاتی اگر وہ محتاج ہوتا، چاہے محبت میں کسی کا محتاج ہو جاتا تو یہ کمزوری ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے. لہٰذا اس کو کسی فیز میں بھی، کسی چیز میں بھی، کسی کی بھی ضرورت نہیں. نہ اس کو فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو عرش کے اٹھانے والوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو عرش، عرش جو اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق اور سب سے خوبصورت مخلوق، یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہے. ہم کہتے ہیں مستوی ہے، بس اتنا ہی کافی، ہمیں نہیں پتا کیفیت کیا ہے، ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اس کو ایسا نہیں کہ عرش کی ضرورت ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ نہ سوچیں. ایسی سوچ لانا بھی، ایسا گمان کرنا بھی صحیح نہیں ہے. اور نہ ہی اس کو جنات کی، نہ ہی اس کو انسانوں کی، نہ اس کو اس زمین آسمان کی، اس کائنات، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس کو کسی کی بھی عبادت کی ضرورت ہے کہ انسان اس کی عبادت کریں یا فرشتے چلو اس کی عبادت کرتے رہیں، چلو انسان نہ صحیح فرشتے ہی کرتے رہیں عبادت، نہیں. الصمد، الصمد، ایک تو یہ معنی آپ نے سمجھا، وہ جس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی چیز میں بھی، نہ اپنے کام بنانے میں، نہ اپنے آپ کو قائم رکھنے میں، نہ اپنی کوئی اور چیزیں کرنے میں. ایک یہ معنی. دوسرا اس کا معنی ہے وہ جو اندر سے کھوکھلا نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو، خلا نہ ہو جس کے اندر. جوف کہتے ہیں پیٹ کو. تو جب جوف ہوتا ہے نا پیٹ، آپ کو پتا ہے یہ پیٹ کی ضرورت ہر ایک جاندار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور جب پیٹ ہوتا ہے ساتھ تو پھر کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس خلا کو پر کرنا ہے نہ کسی چیز سے، تو ہم اندر سے کھوکھ لیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے.
आप देखिए जिस वक्त मजमूआ ज़वाइद में ये रिवायत आती है कि अल्लाह ताला ने जब आदम का पुतला पैदा किया था तो इब्लीस उस वक्त चूंकि मलाइका के साथ रहता था, उसको बड़ा तजस्सुस हुआ कि ये क्या चीज़ बनी है। तो वो आया और आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के चारों तरफ घूम के देखता रहा कि ये क्या चीज़ है। फिर छू के देखा और छूते हुए पेट पे उसका हाथ पड़ गया, उसको दबाया तो वो दब गया, यानी ये पेट था ना जौफ। तो बोला ये अगर सबसे ज्यादा गुमराह होगा और अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार होगा तो इस पेट की वजह से होगा, क्योंकि इंसान इस पेट को भरने के लिए बहुत सारे गुनाह करता है ना। कहते हैं ना, पेट के लिए ही तो कमाते हैं, पेट के लिए ही तो खाते हैं, पेट के लिए तो कितने सारे गुनाह कमाने में इंसान कर जाता है। इसी कमाइयों के पीछे झूठ है, धोखा है, फरेब है, बेईमानी है, मिलावट है, सूद है, बहुत सारी कबाहतें हैं। और झूठ सबसे बड़ा वो है चीज। तो दूसरा आपने ये माना समझा, फिर तीसरा माना समद का है, हर चीज का बुलंद हिस्सा, वो जिससे बालातर कोई भी नहीं है, नहीं वो इतना बुलंद के से ऊपर कोई चीज ना हो, वो है असमद। फिर इब्ने अब्बास का कौल है कि असमद वो है जिसकी तरफ लोग किसी बला या मुसीबत के नाजिल होने पर मदद के लिए रुजू करें, यानी मदद भी वो ही देता है। फिर वो सरदार जो अपने शर्फ में, अपनी अजमत में, अपने हिल्म में, बुर्दबारी में, अपने इल्म में, अपनी हिकमत में कामिल हो। तो इसका एक मतलब ये भी है कि जो कामिल हो, परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब क्या, यानी परफेक्ट किसी एक चीज में नहीं, अपनी हर सिफत में वो परफेक्ट है। और यहां से फिर असमद जो है अल्लाह ताला की जितनी सिफात है ना उन सब के लिए ये नाम आ जाता है कि अल्लाह ताला हर अपनी सिफत के अंदर परफेक्ट कामिल है, यानी वो अपने इल्म में कामिल, वो अपने रहम में कामिल, वो अपने तखलीक में कामिल, वो अपने बाखबर होने में कामिल, वो अपनी तमाम सिफात में, जितने भी अस्माउ सिफात आप पढ़ चुके हैं, आप हिकमत में, अपने मोहब्बत में, वो अपनी समात समी असमी से अपनी समात में कामिल, वो अपनी बसारत में कामिल। तो हर एक चीज इसके साथ हर एक सिफत लग जाती है कि जब वो असमद है कि वो परफेक्ट है। तो हर नाम को इसने अपने अंदर समो लिया। अब मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला अपनी रहमत में कैसे कामिल है, हम माँ की मिसाल देते हैं, लेकिन ये मिसाल भी नहीं दी जा सकती हो कि अल्लाह ताला तो कमाल पे है। माँ तो कभी बच्चे को दुत्कार भी सकती है, कभी कहती है मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी, कभी कुछ कहती। अल्लाह ताला की रहमत ऐसी है कि उसके कंपेरेबल कोई चीज़ नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुसलमानों का खुदा तो बहुत गुस्से वाला है और सज़ाएं देने वाला है और ऐसा है, जबकि वो तो अरहमुर्राहिमीन है, वो रहम में भी परफेक्ट है, तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। इंसान तो सोचता है कि मुझे किसी के ऊपर तरस आ जाता है, रहम आ जाता है, तो आपको जो रहम मिला हुआ है ना, जिसकी बेस के ऊपर आप अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि उसने फलां के ऊपर रहम क्यों नहीं किया, उसने फलां को ये क्यों नहीं दे दिया, आपके दिल में रहम आता है इसलिए, या उसके ऐसे हालात क्यों कर दिए, या उसके ऊपर गम का पहाड़ क्यों तोड़ दिया, तो आपके दिल में जो रहम आ रहा है हमेशा सोचा करें अल्लाह ताला तो अर्रहमान है, जो परफेक्ट है, मुझे जो रहम मिला हुआ वो तो उसकी रहमत के 100वें हिस्से में, 99 रहमतें उसके पास हैं, जो 100वां हिस्सा है उसका भी एक कतरा मुझे मिला है। तो फिर मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ताला अपनी जात में भी कामिल, परफेक्ट, सिफात में भी कामिल, जैसे मैंने आपको ये तमाम सिफात का, आप इसी तरह सोच लें, जितने भी असमाओ सिफात हैं उनको रख लें और उसके अंदर ये सोचें कि वो उनमें परफेक्ट है, और फिर अपने अफआल में भी कामिल, यानी जो भी वो करता है उसमें भी कमाल पे है। फिर असमत का एक माना ये भी है जिसपे कोई आफत नहीं आती, और एक माना है जो बेऐब है, जिसमें कोई ऐब नहीं, जिसके ऊपर कोई आफत नहीं आती, यानी को इससे वो बरी है और कोई नहीं कह सकता दुनिया में कि उसके ऊपर कभी कोई आफत नहीं आती। ये अल्लाह ताला की जात ही है जो इतने कमाल वाली है। फिर एक माना है जो बाकी रहने वाला है और लाजवाल है, उसको कोई जवाल नहीं है। और फिर उलमा ने ये भी फरमाया कि सूरह इखलास के अंदर जो आता है ना, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, तो ये जो आगे लम यलिद वलम यूलद, इससे आगे ये है असमद, ये असमद की ही तशरीह है कि वो जो किसी से पैदा नहीं हुआ और उससे कोई पैदा नहीं हुआ, कोई चीज उससे खारिज नहीं होती और कोई चीज उसके अंदर दाखिल नहीं होती, यानी वो खाना और पीना इससे पाक है, पेट ही नहीं तो खाना पीने की क्या बात है, जो पेट वाले हैं वही खाते पीते हैं ना, तो जब पेट नहीं तो ना खाने पीने की मोहताजी, और जो खाती पीती मखलूक है फिर वो निकालती भी है, तो ऐसी भी कोई चीज उसके साथ नहीं, वो इससे भी पाक है। तो और बीमारियां वो भी पेट की अक्सर होती हैं, पेट में होती हैं, पेट की जगह पे होती हैं, तो आप देखिए कि वो इन सारी कमजोरियों से पाक। तो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुरैश ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि अपने रब का शजरा नसब बताएं, लीनियज बताएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास ही पढ़ी थी, और ये इतनी अजीम सूरह है कि इसी सूरत के बारे में आता है कि एक सहाबी सूरह रहमान को पढ़ा करते थे हर रकत में, हर रकत में, सॉरी सूरह इखलास को हर रकत में पढ़ा करते थे, यानी जब भी कोई भी तिलावत करनी होती तो उसमें सूरह इखलास को पढ़ते एंड में, और उससे पहले जो भी पढ़ना होता। तो लोगों ने इस पे एतराज किया और उनसे पूछा कि आप ये क्यों पढ़ते हैं, हर दफा लाजमी है क्या, जरूरी है कि हर दफा आप ये भी पढ़? तो फरमाया उन सहाबी ने कि ये सूरत जो है रहमान की सिफत है, मुझे इसका पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें अल्लाह ताला की सिफात बयान की गई है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको खबर दे दो कि अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि उनको इस सूरत से मोहब्बत है, अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत रखता है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आता है कि एक और सहाबी थे, इसी तरह वो भी पढ़ा करते थे हर रकत के अंदर ये सूरत पढ़ते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है, तो आपने फरमाया इसकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगी, या इसकी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में पहुंचा दिया। तो ये वो सूरत है जिससे हमें सबको मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि इसकी मोहब्बत हमें भी जन्नत तक पहुंचा सकती है, और इसकी मोहब्बत हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत दिला सकती है, और ये तभी होगा जब हम इस सूरत को समझेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो यही अल्लाहु समद है, कि अल्लाह ही असमद है। अगर असमद की समझ नहीं आई तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये तो जानना आसान है, लेकिन असमद में कितना सारा माना है, ये सारे माने आप जमा करें तो आपको पता चले असमद कौन सी जात है, और वो जात कितनी कामिल है, कितनी परफेक्ट है वो जात, कि उसके हर काम परफेक्ट है, हर चीज परफेक्ट है उसकी। अल्लाह अकबर। और फिर हम इस सूरत को ही देखें तो हम भी कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास आया और फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने 1/3 कुरान की तिलावत करूंगा, और सूरह इखलास पढ़ी, तो सहाबा इंतजार में थे। उन्होंने पूछा, आपने फरमाया यही एक तहाई कुरान के बराबर है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।